मुझे इसमें हंसी आ रही है क्योंकि कल हम लोग कुछ चर्चा कर रहे थे, स्वयमेव आत्मन आत्मानं वेतत्वं पुरुषोत्तमः। और प्रश्न ये मस्कार ये था कि भगवान आप ही आप अपने आप को अपने आप से जानते हैं, तो हम समझेंगे कि भगवान अपने आप को पूरा पूरा जानते हैं, ये अर्थ समझेंगे ना, कृष्ण नोज हिमसेल्फ कंप्लीटली बाय हिमसेल्फ। लेकिन परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज से मैंने पूछा, क्योंकि प्रश्न आया था कि हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं अपने माधुर्य का अनुभव नहीं कर पाता जिस प्रकार से श्रीमती राधा रानी करती हैं, क्योंकि भगवान के माधुर्य का अनुभव भक्त करता है। तो हम कैसे समझें कि कृष्ण अपने आप को पूरी तरह जानते हैं? तो मैंने यही प्रश्न महाराज को तुरंत क्लास के बाद किया था, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, आप लोग भेज सकता हूँ उसको, बड़ा सुंदर है। तो महाराज कहें पहली माधुर्य की बात छोड़ दीजिए, कृष्ण अपने आप को भी पूरी तरह जानते हैं ये नहीं कह रहे हैं। अब कह रहे हैं आप अपने आप को जानते हैं ये अर्जुन कह रहे हैं, यह नहीं कह रहे हैं कि आप अपने आप को पूरी तरह से जानते हैं। और उन्होंने फिर कोटेशन दिया, आप लोग नोट कर लीजिए, 2.6.36, उसमें यह है बताया गया है कि भगवान अपने शक्तियों के विस्तार के वैभव को भी नहीं समझते हैं। क्यों नहीं समझ पाते हैं पूरा? क्योंकि वह अनंत हैं। और फिर सीधे स्वामी इसमें कहते हैं कि अगर भगवान, इसका अर्थ यह नहीं कि वो सर्वज्ञ नहीं है, वो सर्वज्ञ हैं। और प्रभुपाद जी इसको समझाते हैं कि भगवान जानते हैं अपनी शक्तियों के विस्तार को, जान लेते हैं फिर शक्तियां और विस्तारित हो जाती हैं। ऐसे ही एक शब्द चैतन्य चरितामृत में आया, हुड़ा हुड़ी, श्रीमती राधा रानी कृष्ण के सौंदर्य का आस्वादन करती हैं, लेकिन फिर वो सौंदर्य और बढ़ जाता है। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि श्रीमती राधा रानी कृष्ण के सौंदर्य को नहीं जानती, माधुर्य को नहीं जानती? ये नहीं कह सकते, लेकिन जैसे जितना वो अनुभव करती हैं उसके बाद फिर और बढ़ जाता है, फिर वो क्या करते हैं और अनुभव कर रही हैं। कब से कर रही हैं? अनादिकाल से। कब तक करती रहेंगी? अनंत समय तक। यही धारणा समझना चाहिए अनंत की। जैसे रूप गोस्वामी, क्या शिला रूप गोस्वामी जी को हरिनाम की माधुर्य का अनुभव नहीं है? है। लेकिन क्या कह रहे हैं? न जानिता, मैं नहीं जान रहा हूं कि इसमें कितना मधुरता है। इसका अर्थ यह नहीं कि वो नहीं जान रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि असीमित है। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से इसको सामंजस्य से बिठाना चाहिए। अब हम लोग आज पढ़ते हैं, अर्जुन यहां पे कह रहे हैं कि हाँ, अर्जुन अपनी वो औत्सुक्य, औत्सुक्य मतलब उत्सुकता को प्रस्तुत कर रहे हैं, भगवान के बारे में सुन रहे हैं। और भगवान के बारे में सुनने का प्रभाव ये होता है कि सुनने की इच्छा और अधिक जागृत हो जाती है। ठीक है, इसको भी हम लोग चर्चा करेंगे। मेरे पीछे के माइक पे बोलिए, श्रीमद भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 16 से आगे। वक्तुम अर्हस्य शेषेणा,
वक्तुम अर्हस्य शेषेणा,
दिव्याहियात्मविभूतयः,
दिव्याहियात्मविभूतयः,
याभिर्विभूतिभिर्लोकाः,
याभिर्विभूतिभिर्लोकाः,
निमांस्त्वां व्याप्यतिष्ठसि,
निमांस्त्वां व्याप्यतिष्ठसि।
वक्तुम अर्हस्य अशेषेणा, अशेष, शेष का मतलब होता है खत्म कर देना, अशेषेणा मतलब बड़े विस्तार से आप हमको अपनी दिव्य विभूतियों के बारे में, आत्म विभूति जो आपकी स्वयं की विभूतियां हैं जिसके द्वारा आप इस जगत में अनुभूत किए जा सकते हैं, वह है हमको आप बताइए। या भीर विभूति भीर लोकान निमांस्त्वम व्यापतिष्ठते, जिसके द्वारा आप इस जगत का नियमन कर रहे हैं आप, वह हमको बताइए। कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन देवी ऐश्वर्यों को बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं, और व्याप्त होकर व्याप्त किस तरह से हैं? नियामक के रूप में। गीता भूषण टीका, छोटी सी टीका है। क्योंकि आपके स्वरूप को यथावत जानना कठिन है, इसलिए मैं आपकी विभूतियों को जानने के लिए जिज्ञास हूं। ये लिंक है पहली लाइन। पिछले श्लोक में भगवान ने, अर्जुन ने क्या कहा? स्वयमेव आत्मानम आत्मानम, आप ही अपने आप को जानते हैं, इसलिए स्वरूप को जानना, समझ लेना चाहिए कि स्वरूप को जानना भगवान के कठिन है, तो मैं आपकी विभूतियों को देखकर आपका स्मरण करना चाहता हूं। तो इसलिए आप बताइए कि किस प्रकार से आप अपनी विभूतियों के रूप में, विभूति मतलब शक्तियों के रूप में इस जगत में व्याप्त है, स्पष्ट है। दिव्य अर्थात अपनी उत्कृष्ट और असाधारण विभूतियों को पूर्ण रूपेण मुझे बताइए, जिसके द्वारा आप इस जगत का नियमन करते हुए विराजमान होते हैं। समझ में आया? जगत भगवान नियामक हैं, लेकिन किस प्रकार से वो नियमन कर रहे हैं, इसको जान करके भगवान की ऐश्वर्य का अनुभव होता है, उनके प्रति हमारा शरणागति का भाव बढ़ता है। कितने महान भगवान हैं, इसलिए वो पूछ रहे हैं। और दिव्य का अर्थ यहाँ पे, दिव्य का अर्थ हमेशा उस तरह से नहीं लेना होगा कि गुणों के परे। जनरली दिव्य का अर्थ हम ये लेते हैं, लेकिन यहाँ बोल रहे उत्कृष्ट, असाधारण। भले ही भौतिक जगत में है, लेकिन ये जो गुण हैं वे बहुत, ये जो विभूतियां हैं वे बहुत आश्चर्यजनक है। कैसे समझाऊं मैं? मान लीजिए आप किसी के शिष्य को देखते हैं और वह शिष्य बहुत अच्छा भक्त है, तो आप सोचेंगे ना कि गुरुजी कितने अच्छे भक्त होंगे। गुरुजी की शक्ति के द्वारा तो शिष्य भक्ति कर रहा है। तो उसी प्रकार से, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, उसी प्रकार से इस जगत में कोई व्यक्ति अगर बहुत महान दिख रहा है तो वो भगवान के द्वारा शक्ति प्रदत्त है। और भगवान इस बात को बोलेंगे भगवत गीता में, केवल एक अंश मात्र है। और उसमें एक और बात ध्यान देना चाहिए, अगर हम किसी से द्वेष कर रहे हैं तो हम वस्तुतः कृष्ण से द्वेष कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास जो भी अच्छा गुण है वह कृष्ण से ही आया है। ये समझ में आया बात? तात्पर्य इस श्लोक से लगता है कि, मतलब समझिए बात क्यों मैं बोल रहा हूं, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस जगत में किसी के पास बल है, सौंदर्य है, ऐश्वर्य है, वैराग्य है, उसका स्रोत कौन है? भगवान कृष्ण है। तो जब भगवान से प्रेम है तो उनकी विभूतियों को देख करके प्रसन्नता होती है, द्वेष नहीं होता। द्वेष मतलब एनवी, एक जगह। और हमारे हृदय में कितना ही मात्सर्य हटा है, इसको हम देख सकते हैं कि जब किसी का उत्कर्ष हो, उत्कर्ष मतलब प्रगति हो, तो क्या हमको अच्छा लगता है। और एक इसमें सूक्ष्म बात यह भी है कि जो लोग भौतिकतावादी में बहुत आगे बढ़े हुए हैं, भक्त लोग बोलते हैं इससे क्या फायदा, तुम लोग भौतिकतावाद में इतना क्यों प्रगति कर रहे हो, तो क्या भगवान के भक्तों को उनसे द्वेष होता है, क्या उनके प्रति ईर्ष्या होती है, इसलिए बोल रहे हैं? प्रश्न समझ रहे हैं? कोई भौतिकता में बहुत लिप्त है, बहुत धनी हुआ जा रहा है, तो क्या भगवान के भक्त उनसे द्वेष करते हैं, इसलिए बोलते हैं अरे तुम इस धन के पीछे क्यों भाग रहे हो? क्या उत्तर है? करुणावश, यस, वो जान रहे हैं कि इससे इस जीव का कुछ भी फायदा नहीं होना, ये तो और अधिक इसमें लिप्त हो जाएगा, इसमें सारे दोष आ जाएंगे, भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है। भक्ति तो नहीं कर रहा है अपितु भक्ति से दूर ले जाने वाले कार्य में और संलग्न हो रहा है। तो करुणावश ये बोलते हैं, ठीक है। तात्पर्य, इस श्लोक से लगता है कि अर्जुन भगवान संबंधी अपने ज्ञान से पहले से संतुष्ट हैं। कृष्ण कृपा से अर्जुन को व्यक्तिगत अनुभव, बुद्धि तथा ज्ञान, और मनुष्य को इन साधनों से जो कुछ भी प्राप्त हो सकता है वह सब प्राप्त है, तथा उसने कृष्ण को भगवान के रूप में समझ रखा है। क्या प्रमाण था? परब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम, इस प्रकार के भगवान के गुणों को वह समझ रहे थे। उसे किसी प्रकार का संशय नहीं है, तो भी वह कृष्ण से अपनी सर्व व्यापकता की व्याख्या करने के लिए अनुरोध करता है। मतलब उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन कर रहे हैं। क्यों? सामान्य जन तथा विशेष रूप से निर्विशेषवादी भगवान की सर्व व्यापकता के विषय में अधिक विचारशील रहते हैं। मतलब वो यही धारणा करना चाहते हैं किस प्रकार से ब्रह्म सब जगह है। अतः अर्जुन श्री कृष्ण से पूछता है कि वे अपने विभिन्न शक्तियों द्वारा किस प्रकार सर्वव्यापी रूप में विद्यमान रहते हैं। हमें यह जानना चाहिए कि अर्जुन सामान्य लोगों के हित के लिए ही पूछ रहा है। अब इसको टीका से कैसे रिलेट करें? लिंक क्या था? भगवान के दिव्य स्वरूप को समझना सामान्य लोगों के लिए कठिन है, लेकिन इस जगत की वस्तुओं को देखना ये आसान है। इसको आप दूसरे स्कंद में भी पढ़ेंगे, जो दूसरे स्कंद की शुरुआत में ही फर्स्ट स्टेप इन पहला गॉड रियलाइजेशन, यस। तो व्यक्ति भगवान की दिव्य स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकता है, तो इस जगत के जो क्या कहते हैं हम लोग उसको, विश्व रूप, उसका वो ध्यान करते हैं। विश्व रूप जो है वह भगवान का स्वरूप नहीं है, विश्व रूप जड़ है। भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद है, लेकिन क्योंकि वह सच्चिदानंद स्वरूप की धारणा नहीं कर सकते हैं, इसलिए शास्त्र बोलते हैं कि वह विश्व रूप की धारणा करें, किस प्रकार से भगवान इस पूरे जगत में व्याप्त हैं, और फिर धीरे धीरे शुद्धिकरण होगा तो वे आगे भगवान के शुद्ध स्वरूप का धारण करने के लिए योग्य हो जाएंगे। तो इसलिए अर्जुन इस प्रकार से बोल रहे हैं, हाँ, क्योंकि भौतिक वस्तुओं से बना हुआ है। विश्व रूप का अर्थ क्या है, ऊपर के लोगों से लेकर नीचे तक जितने भी लोग हैं उनकी धारणा की जाती है कि भगवान का ये मुख है, ये भगवान के हाथ हैं, ये भगवान के चरण हैं। भगवान का स्वरूप तो चिदघन है, वह इस भौतिक जगत से बिल्कुल विलक्षण है, तो इस प्रकार से उसको भौतिक कहा जाता है। वही नहीं, विराट स्वरूप भी सच्चिदानंद नहीं है, वही विराट रूप कहिए विश्व रूप कहिए वो एक ही बात है। ठीक है, तो प्रश्न समझ में आ रहा। अब प्रश्न आगे देखते हैं, मेरे पीछे बोलिए, कथम विद्याम अहम योगिन,
कथम विद्याम अहम योगिन,
त्वाम सदा परिचिन्तयन्,
त्वाम सदा परिचिन्तयन्,
केषु केषु च भावेषु,
केषु केषु च भावेषु,
चिन्तयोसि भगवन् मया,
चिन्तयोसि भगवन् मया,
कथम विद्याम अहम योगिन, हे योगी योगेश्वर, त्वाम सदा परिचिंतयन, मैं सदा आपका किस प्रकार से परिचिंतन कर सकता हूँ, किस प्रकार से आपको जानूंगा, विद्या मतलब आपको जान सकता हूँ, और जानकर किस प्रकार आपका सदा परिचिंतन मतलब सम्यक रूप से स्मरण कर सकता हूँ, इस जगत में वस्तुओं को देखकर, केशु केशु च भावेशु चिंतयोसि भगवन मया, इस जगत की वस्तुओं को, भावेशु मतलब इस जगत में जो वस्तुएं हैं उनमें, उनको देख करके उनमें आपको मैं कैसे देख सकूंगा। उनमें आप मतलब किस प्रकार से विराजमान है विभूति रूप में, मैं कैसे देख पाऊंगा। इसको आप समझते हैं कि इस जगत में अगर किसी व्यक्ति की वस्तु हम देखते हैं तो उस वस्तु उस व्यक्ति का स्मरण होता है। तो इस जगत में क्योंकि हमारे भगवत प्रेम नहीं है तो वस्तुओं को देखते सोचते हैं कि ये मेरे लिए है, और मेरे लिए तो है ही, साथ ही साथ बोलने लगते हैं ये मेरी भी है, है ना। लेकिन भक्त ये विचार याद रहता है कि सारी वस्तुएं भगवान की हैं, उनके उपयोग के लिए होती। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं, हे भगवान आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। गीता भूषण टीका। अब भी प्रश्न है, विभूतियों के वर्णन से क्या प्रयोजन सिद्ध होगा। ये प्रश्न मान लो भगवान करें तो ये इस श्लोक इसका उत्तर है। मान लो ये प्रश्न करें कि तुम विभूति के बारे में पूछ रहे हो तो क्यों पूछ रहे हो, क्या कारण है, तो ये बोल रहे हैं कि क्योंकि मैं इस प्रकार से आपका स्मरण कर पाऊं। ठीक, लिंक समझ में आ रहा होगा। योग अर्थात योग माया और योगी अर्थात योग माया शक्ति को धारण करने वाले, इसमें अभी आगे नोट आने वाला है, योग माया का अर्थ क्या होता है। योग माया मतलब वह शक्ति जो भगवान को कभी कभी भक्त के समक्ष प्रकट करती है या अप्रकट कर देती है। बड़ी गंभीर बात है, भगवान की भगवत्ता को छुपाना और कभी कभी प्रकट करना, यह योग माया का कार्य है। योग माया वैकुंठ में कार्य नहीं करती, चैतन्य चरितामृत में इसका उद्धरण दिया जाता है। अब आप कहेंगे क्यों, क्योंकि वहां पे सबको हमेशा मालूम रहता है कि भगवान भगवान है। यस, गोलोक में क्या सबको मालूम रहता है कि भगवान भगवान है, नहीं। तो या तो गोलोक में कार्य करती है या फिर भूलोक में काम करती है, जगत में काम करती है। जब भगवान यहाँ पे आते हैं तब भी अपने आप को योग माया से ढके रहते हैं कि नहीं। नाम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत मूढ़ोयम ना भी जानाती लोको माम अजम अव्ययम। तो इस बात को हम गीता में सुनते हैं, तो इस जगत में योग माया कार्य करती है और आध्यात्मिक जगत में, लेकिन अंतर क्या है। आध्यात्मिक जगत में गोलोक में या भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जब भगवान की भगवत्ता अपने भक्तों से छुपाई जाती है उसका प्रयोजन क्या होता है। प्रयोजन ये होता है कि उनका प्रेम आदान प्रदान बहुत बढ़ जाए, वो प्रेम से कृष्ण की सेवा कर सके। अगर देखिएगा ये तो भगवान है तो उनका प्रेम शिथिल हो जाता है। ठीक, समझ में आ रहा है। यहाँ पे योग माया का क्या प्रयोजन है, जो लोग भगवान को भूले रहना चाहते हैं वो भूलते रहे, उन्हें कभी प्रकट नहीं हो कि कृष्ण भगवान। जो भगवान की भक्ति करते हैं योग माया के द्वारा ही भगवान के गुण उनको प्रकट भी होने लगते। समझ रहे हैं मेरे ठीक? आपका सदा तो समझ रहे हैं, योग माया के द्वारा आप सब जगह विद्यमान हैं लेकिन अपने को ढके रखते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश आ रहा है लेकिन हमको नहीं मालूम चलता कि सूर्य का प्रकाश कहां से आ रहा है। आप विभूति के रूप में विद्यमान हैं लेकिन भगवान अपने आप को ढके रखते हैं, ये बोल रहे हैं। जिस व्यक्ति को हम देखना नहीं चाहते, जिसको हम द्वेष करते हैं, उसको देखना नहीं चाहते कि नहीं, शकल भी नहीं देखना चाहते, और वो हर जगह विद्यमान हो तो क्यों भाई? यश प्रभु आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी को बिल्कुल नहीं देखना चाहते, कभी हुआ जीवन में? और उसकी फोटो अगर रूम में हर जगह लग जाए तब देखना तो पड़ेगा लेकिन आप दुखी हो जाएंगे। एक उदाहरण समझिए कि कोई व्यक्ति, मान लीजिए हमारे पिताजी हैं और हम घर में नहीं रहना चाहते थे, मैं आपके संग नहीं रहना चाहता, इस घर में या तो आप रहेंगे या मैं जा रहा हूं छोड़कर, ठीक जाओ। लेकिन आप जब दूसरे घर में जाते हैं तो आपको मालूम चलता है कि वो भी पिताजी का घर है, और फिर अगले घर में जाते हैं तो क्या मालूम चलता है, अरे ये भी पिताजी का घर है, मैं यहां भी नहीं रहूंगा, मैं वहां भी नहीं रहूंगा, मैं यहां भी नहीं रहूंगा, लेकिन जहां जहां जा रहे हैं वो पिताजी का ही घर है। नहीं रहने का मन करेगा ना, उसकी अब मैं क्यों लूं? तो ऐसी स्थिति में आना पड़ेगा कि घर तो पिताजी का हो लेकिन हमको मालूम ना चले कि घर पिताजी का। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे मैंने क्या बोलना चाहता हूं? तो जीव जो भगवान से बहिर्मुख है वो चाहता वो उसके लिए आवश्यक है कि भौतिक जगत बनाया जाए जहां पे वह इस भुलावे में रहे कि वस्तुएं उसकी हैं। भुलावा समझते हैं, फॉरगेटफुलनेस, भूला रहे कि ये वस्तुएं किसकी हैं, प्रश्न ही ना करे कभी। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? अच्छा समझ तो पा रहे हैं, जीवन में देख होते हुए देख पा रहे हैं कि नहीं? अगर हम भगवत गीता नहीं सुने होते तो कभी प्रश्न नहीं करते ये शरीर भी किसका है, मैं किसका हूं, ये जगत किसका है, नहीं सोच पाते कि नहीं? अपितु हम ये बोलते हैं अरे मैं कृष्ण को क्यों दूं, कृष्ण ने मुझे दिया ही क्या है, बुरी दुनिया तो यही कर रही। तो इस प्रकार से भगवान अपने आप को ढके रखते हैं योग माया से। सब कुछ भगवान का होने के बाद भी हम समझ नहीं पाए कि वह भगवान का है, तभी हम भोग बुद्धि का निर्माण कर सकते हैं। अब तो मैं समझ में आने लगूंगी बातें सर, ठीक। आपका सदा संस्मरण करते हुए हे योग माया, ठीक है, हे योग माया शक्ति के स्वामी, आपका सदा संस्मरण करते हुए मैं आपको कैसे जान सकता हूं जो अनंत कल्याण गुणों को प्रकाशित करने वाले हैं। तो स्पष्ट में आ रहा है कल्याण गुण मतलब उन गुणों की चर्चा करने से जीव का कल्याण होता है, अविद्या नाश होती है, और अनंत मतलब आपके ऐसे अनंत कल्याण गुण है। आप किन किन पदार्थों में अपने को प्रकाशमान करते हैं आप यह मुझे बताइए ताकि मैं आपका ध्यान कर सकूं। आप में से कितने लोग सूर्यदेव को प्रणाम करते हैं रोज? अच्छा सूर्य नमस्कार तो सूर्य नमस्कार तो पेट ठीक करने के लिए करते हैं। अच्छा कितने लोग सूर्य नारायण को प्रणाम करते हैं? हाँ इसीलिए मैंने प्रश्न किया, सूर्यदेव अलग हैं, सूर्य नारायण अलग हैं। सूर्यदेव का नाम क्या है? विवस्वान। सूर्य नारायण अलग हैं, वो इनके ही वहीं पे लोक में हैं, इनकी पूजा वह स्वयं करते हैं, सूर्य नारायण, और इनकी पूजा कर रहे थे भरत महाराज। आप पांचवें स्कंद में पढ़िएगा, लास्ट में वो श्लोक है जब वो शरीर छोड़ रहे होते हैं तो इस प्रकार से बोलते हैं। समझ में आ रहा है? लिखे मंत्र, कभी कोई व्यक्ति बोला अरे सूर्यदेव की पूजा कर रहे हैं कि भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं, ना उनके अंदर सूर्य नारायण है। हम लोग बार गीता की टीका में पढ़ चुके हैं, यू आदित्य तिष्ठति आदित्य ना, ऐसे आदित्य मतलब सूर्य के अंदर वो हैं लेकिन सूर्य नहीं समझ पा रहे हैं कि सूर्य के अंदर वो है। इस प्रकार से हमने पढ़ा था हा? भगवान विष्णु, ये मैंने एक जगह और पढ़ा चैतन्य चरितामृत में कि भगवान जो जना देवता है उनके परमात्मा भी अलग अलग स्वरूप है भगवान के। शिव जी के हृदय में जो परमात्मा है वो जनार्दन रूप में है, मतलब मैं गलत हो सकता हूँ कि मुझे शब्द याद नहीं है, इसे गलत नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अलग अलग भगवान स्वरूप में है लेकिन नहीं जान पाते हैं लोग। जैसे आपने पूछा था कि दुर्गा देवी के हृदय में भगवान है कि नहीं, मोहित प्रभु पूछे थे ना आप, मैं भेजा था ना आपको, तो भरत महाराज को बचाने के लिए कली महारानी को, काली माता जी को प्रेरणा दिया था, तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि वह परमात्मा के रूप में काली के हृदय में भी है, तो सभी देवताओं के हृदय में भी परमात्मा के रूप में विराजमान।
सूर्य नारायण भगवान
विष्णु है, भगवान विष्णु
जो सूर्यदेव से अलग है, लेकिन
वो सूर्यदेव से अलग है। सूर्यदेव कौन है? विवस्वान एवं विवस्वतो योगम प्रोक्त वाहन।
सूर्य नारायण क्यों है फिर?
क्योंकि भगवान है,
कुछ तो होगा पीछे।
आपका नाम सुंदर माधव क्यों है? तो नाम अब कृष्ण, कोई कहे कृष्ण ने मोर पंख क्यों धारण किया है, मैंने उत्तर दिया, जब आप गोलोक जाइएगा तो पूछ लीजिएगा, अरे उनका ही स्वरूप है, तो उनका नाम सूर्य नारायण है। कहाँ गए? ये आपकी विभूतियों के वर्णन के द्वारा हो जाएगा, इसलिए आप मुझे अपनी विभूतियों की शिक्षा दीजिए। मतलब जब विभूति के बारे में बताएंगे तो मैं किसी व्यक्ति को देखूंगा तो यही स्मरण करूंगा कि ये शक्ति आपके द्वारा आ रही, आपका स्मरण होगा। इस नोट को हम पहले पढ़ चुके हैं, योग माया की शक्ति के द्वारा भगवान के किसी विशेष पहलू को भक्त को प्रकट या अप्रकट किया जाता है। इसकी व्याख्या मैंने कर दी, इसको नहीं पढ़ा रहा। अनुपम कृष्ण प्रभु तात्पर्य पढ़िए।
तात्पर्य, जैसा कि पिछले अध्याय में कहा जा चुका है, भगवान अपनी योग माया से आच्छादित रहते हैं, केवल शरणागत भक्त जन ही उन्हें देख सकते हैं। अब अर्जुन को विश्वास हो चुका है कि उसके मित्र कृष्ण भगवान हैं, किंतु वह उस सामान्य विधि को जानना चाहता है जिसके द्वारा सर्वसाधारण लोग भी उन्हें सर्वव्यापी रूप में समझ सके।
ओके, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर वन ये है कि जब तक व्यक्ति शरणागत नहीं होता, भगवान की योग माया शक्ति ढकी रखती है और भगवान बाध्य नहीं अपने आप को किसी को प्रकट करने के लिए। ये न सिर्फ भगवान पे घटित होगा, भगवान के नाम पे भी घटित होगा। घटित समझते हैं, लागू होगा। जब हम भगवान के नाम की सेवा करते हैं निरपराधिक रूप से, और वो दो सेवाएं हैं, जप करना निरपराधिक रूप से और नाम दूसरों को देना। क्या दो सेवाएं हैं मोहित प्रभु भगवान कृष्ण की? नाम, नाम जप करना निरपराधिक रूप से 10 अपराधों से बचते हुए, और दूसरा नाम दूसरों को देने का प्रयास करना, हरे कृष्ण मंत्र। तो इस प्रकार से जब हम करते हैं तब भगवत कृपा से हमको अनुभूति होती है, हम समझ पाते हैं कि भगवान का नाम किस प्रकार से अभिन्न है। हम केवल लॉजिक या तर्क से इस बात को नहीं समझ सकते। We cannot demand Krishna to reveal himself. कृष्ण को ऐसा नहीं कि हम कुछ हल्ला बोल देंगे तो कहेंगे नहीं हमको मान नहीं रहे हैं, हम आ जाएं कृष्ण के सामने, इनों के सामने, ऐसा नहीं होता। ठीक है, और दूसरा पॉइंट यहाँ पे सीख रहे हैं कि सामान्य लोग इस प्रकार से भगवान के शरणागत नहीं है, तो कम से कम भगवान को इस जगत में वस्तुओं में दिखने का क्षमता को जागृत कर सके। यस,
असुरों तथा नास्तिकों सहित सामान्य जन कृष्ण को नहीं जान पाते, क्योंकि भगवान अपनी योग माया शक्ति से आच्छादित रहते हैं। दूसरी बात यह है कि ये प्रश्न जन सामान के लाभ हेतु पूछे जा रहे हैं। उच्च कोटि का भक्त केवल अपने ही ज्ञान के प्रति चिंतित नहीं रहता, अपितु सारी मानव जाति के ज्ञान के लिए भी रहता है, इच्छुक रहता है।
क्यों?
ताकि उनका कल्याण हो।
हाँ, देखिए इस जगत में ये सब हम अपने आप भी होता हुआ देखते हैं। मान लीजिए कोई आपको बड़ी कठिन बीमारी थी और उसकी दवा आपको मालूम चल गई, और कदाचित आपके भाई को भी वही बीमारी है, तो आप क्या कहेंगे, क्या करेंगे, उसको बताएंगे? तो आप तो ना बीमार हैं। हाँ, ये बात है, आत्मपमेन सर्वत्र। जब वाकई सर्व सयोगी परमो मतः, जो अपने सुखम वा यदि वा दुखम सयोगी परमो मतः, कौन परम योगी है? आत्म उपमा, आत्म पम्मेन सर्वत्र सर्वत्र समबुद्धयः, सुखम वा यदि वा दुखम सयोगी परमो मतः, जो अपने सुख दुख के समान ही दूसरे के सुख दुख को समझता है। यही बात यहां बोल रहे हैं कि जो भगवान के भक्त हैं उनकी कृपा, उनकी करुणा केवल गरीबों के प्रति नहीं रहती, सभी गरीबों के प्रति रहती। समझ में आया? जो भगवान के भक्त नहीं है वह धन के बाद भी वे दुखी रहते। मैं इंडोनेशिया गया था, जिस मतलब एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं उसको, रिजॉर्ट था, और उस रिजॉर्ट को मंदिर को डिनोट किया था। तो जिस भक्त ने किया था बहुत प्रसिद्ध और बहुत धनवान व्यक्ति, खुद का बैंक है। और मैंने उनसे पूछा कि क्या आप इस धन से संतुष्ट थे? नहीं, मैं बहुत सुखा अनुभव करता था। और विनोद की बात भी थी कि मैं उनके घर में कार्यक्रम करने के लिए गए दूसरी जगह शहर में, उनका ऑलमोस्ट हर घर शहर में घर था। तो जैसे मैं यहाँ पे प्रवचन के लिए आता हूँ तो अगर 4-5 चप्पलें रखी, इसका क्या अर्थ है 4-5 लोग हैं? तो वहां कम से कम 10-15 चप्पलें रखी हुई थी। तो मैं बड़ा खुश हुआ, हमने कहा वाह भाई बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे, पहले से आ जाते हैं, बड़े आस के वेट कर रहे हैं। और देखा अंदर कोई नहीं है, तो आश्चर्य, 15-20 चप्पल रखी हुई है, कोई नहीं है। तो भक्त ने बोला ये सारी चप्पलें मेरी हैं। तो मैंने उनको बोला कि आपको पहनने के लिए एक ही चप्पल, दो ही सेट पहनेगा ना, एक दूसरे पांव में दूसरे पांव में। तो अगर आप एक चप्पल से संतुष्ट हो जाते तो इतनी चप्पलें क्यों खरीदते? ये आपको बात लौकिक लग रही है, लेकिन लौकिक की बात नहीं है। धन बहुत अधिक है लेकिन उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं और केवल जल रहे हैं हृदय। ये चीज क्या हमने पढ़ा था, मधुलवकणे, काम है उसकी इच्छा पूर्ति के लिए थोड़ा घी डाल देते हैं और फिर अग्नि शांत हो जाती नहीं, और बढ़ जाती और जलाती है। फिर क्या करते हैं, थोड़ा और घी डाल देते हैं और बढ़ जाती है। फिर क्या करना चाहिए मित्र, उसके बाद तो आप समझ गए क्या करना चाहिए, और घी डाल देना चाहिए, नहीं और घी डाल देते। तो इस प्रकार से काम अग्नि बढ़ती जाती, जलती जाती, जलती जाती स्थिति। लेकिन पानी तो मिलता नहीं है, ये बात है ना। यह तो जब हरि कथा होगी, भगवान के भक्तों का संग होगा, तभी समझ पाएगा। यस,
अतः अर्जुन वैष्णव या भक्त होने के कारण अपने दयालु भाव से सामान्य जनों के लिए भगवान के सर्वव्यापक रूप के ज्ञान के द्वारा के द्वार का द्वार खोल रहा है।
बहुत अद्भुत है, अगर अर्जुन ने नहीं पूछा होता तो ये ज्ञान हमारे सामने कभी प्रकट नहीं होता कि सूर्य की जो किरणें हैं वह भी कृष्ण से ही आ रही। यस, जैसे एक छोटा सा बात सोचिए, अगर परीक्षित महाराज ने ये प्रश्न नहीं किया होता कि नरक से लोग कैसे बचेंगे, तो कभी भी वह श्लोक सुखदेव गोस्वामी के द्वारा हमको नहीं मालूम चलते जो विष्णु दूतों ने बोले थे, अज्ञानाद अथवा ज्ञानाद उत्तम श्लोक नाम यत संकीर्तितम अघम पुंसो दहे दीदो यथानला। जान से अनजान से कैसे भगवान का नाम उच्चारण करे, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, जिस प्रकार से ईंधन को अग्नि में देने से ईंधन पूरा नष्ट हो जाता है, कभी सुनने को मिलता? तो ऐसा नहीं कि वह नरक जा रहे हैं, नरक का वर्णन सुनकर के ये नहीं सोचा उन्होंने, कहा कि अरे मरने दो उनको, जाने दो, वह लोगों के कल्याण के लिए इस प्रकार का प्रश्न कर, उनको तो पता भी है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी से वह सुनना चाहते। यस,
वह कृष्ण को जानबूझकर योगी न हो कहकर संबोधित करता है, क्योंकि वह योग माया शक्ति के स्वामी है, जिसके कारण वह सामान्य जन के लिए अप्रकट या प्रकट होते हैं।
ये क्लियर है, समझा चुके हैं इसको?
Yes.
सामान्य जन जिसे कृष्ण के प्रति कोई प्रेम नहीं है, कृष्ण के विषय में निरंतर नहीं सोच सकता।
बहुत सुंदर बात प्रभुपाद कहते हैं, बहुत अच्छी बात। चलिए इसे कहते हैं ना, मैम आई एम थ्रोइंग अ बॉल एंड लेट अस सी इफ यू कैन कैच इट। हमारा मन हर क्षण कुछ ना कुछ रसास्वादन कर रहा है, आवर माइंड इज कॉन्स्टेंटली टेस्टिंग समथिंग। Did you catch this ball? तो अब जो भक्त है नहीं है, शुद्ध भक्त वसुता नहीं है, वह हमेशा कृष्ण विषय सुन करके सुखी नहीं रह सकता। आपको याद आ रहा है जिन लोगों का हृदय, जिनका मन अति दुरति दुष्टम तीव्रम इत्यादि था, प्रहलाद महाराज बोल रहे थे, वह आपकी कथा को सुनकर तृप्त कैसे रह सकता? याद आ रहा है प्रहलाद महाराज के बोला था, जब कामातुरम दुरति दुष्टम तीव्रम कामातुरम, तीव्रम मतलब इसको को संयमित करना कठिन है, दुरति दुष्ट मतलब बुरी बुरी वासनाएं हैं, कामातुर मतलब काम इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए बहुत आतुर है, ऐसा मन लेकर के व्यक्ति कहां भगवान की लीलाओं को सुनकर के तृप्त रह सकता है। अब इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि लीला सुनेगा लेकिन पूरे दिन नहीं सुन सकता, कुछ करना है। कदम कहना महाराज बहुत अच्छा बोले, We don't need to do many things. We are doing those things because we want to do those things. हमें बहुत सारे कार्य करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम वो करते हैं क्योंकि हमें वो करना चाहते हैं। करना प्रभुपाद जी क्या करके करना क्या है, सिद्धांत तो ये कि पूरे 24 घंटे हरिनाम कीजिए, भागवत पढ़िए, उसी से सिद्धि हो जाएगी, प्राय लोग नहीं कर सकते ऐसा। तो ये बात बोल रहे हैं कि निरंतर नहीं सो सकता डायरेक्ट भगवान के बारे में। यस,
वह तो भौतिक चिंतन करता है।
क्यों करता है समझ में आया? क्योंकि मन को कुछ स्वाद चाहिए। यस,
अर्जुन इस संसार के भौतिकतावादी लोगों की चिंतन प्रवृत्ति के विषय में विचार कर रहा है। केशु केशु च भावेशु शब्द भौतिक प्रकृति के लिए प्रयुक्त है। भाव का अर्थ है भौतिक वस्तु।
ठीक है, समझ में आ रहा है? भौतिक वस्तुओं को देखकर मैं कैसे आपका स्मरण करूं? यस,
चूंकि भौतिकवादी लोग कृष्ण के आध्यात्मिक स्वरूप को नहीं समझ सकते, अतः उन्हें भौतिक वस्तुओं पर चित्त एकाग्र करने की तथा यह देखने का प्रयास करने की सलाह दी जाती है कि कृष्ण भौतिक रूपों में किस प्रकार प्रकट होते हैं।
स्पष्ट है? इसका एक एप्लीकेशन भी है। जब हम इस प्रकार से भक्ति करते हैं और भगवान से थोड़ा प्रेम जागृत होता है, एक भक्त भौतिक वस्तुओं को देख करके यह नहीं सोचता है कि इसका उपभोग मैं कैसे करूं, उपभोक्ता नहीं रहता हो, वह ये सोचता है कि इन वस्तुओं का उपयोग मैं कैसे कृष्ण की सेवा के लिए करूं। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। मेरी इच्छा होती थी कि इसकी रिकॉर्डिंग करी जाए क्लास की, और मैं चाह रहा था कि क्या तरीका हो जिससे रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी हो। तो मैं सोच रहा था तो एक भक्त ने बताया, आयरिक ले लीजिए। तो इस आयरिक से मेरा कोई और प्रयोजन नहीं है, लेकिन क्योंकि भगवान की सेवा में है तो उसका हम ध्यान रखते हैं। आप एग्जाम्पल समझ रहे हैं मेरी बात? प्रभुपाद जी, ये समझ में आ रहा उदाहरण? आप इस जगत की वस्तुओं को देखते हैं, जैसे आपको कोई भी सेवा मिली और आप जिस जगत की वस्तुओं को देखेंगे तो आपको कृष्ण का स्मरण होगा। मैं अपना उदाहरण बता रहा हूं। मुझे बताया गया था कि आप प्रसादम हॉल बनाइए, उसमें कोई और चैलेंज ये था कि उसमें कोई बीच में पिलर नहीं आना चाहिए, और सब भक्त लोग बोल रहे थे संभव ही नहीं है कि 100 फिट का या 85 फिट का शेड बने और उसमें पिलर ही नहीं हो। कैसे हो सकता है? मैं तो इतना बड़ा इंजीनियर हूँ, छोटा भी इंजीनियर भी नहीं हूँ, तो नहीं समझ में नहीं आ रहा था। मैं सोच रहे थे, तो यहां से जब मैं दिल्ली जाता था तो मैं सोचा करता था, देखो कोई शेड है इस प्रकार का, तो देख रहा हूं, ढूंढ रहा हूं शेड, लेकिन स्मरण क्या आ रहा है? मुझे कृष्ण की वो सेवा इस प्रकार से करनी। नहीं क्या आप लोगों का इस प्रकार कोई अनुभव कभी नहीं हुआ? आप देख रहे वस्तु, या जैसे आप फूल माला चुनने के लिए गए हैं तो देख रहे हैं फूल, लेकिन क्या स्मरण कर रहे हैं? आपके मन में पहले से ही एक स्कीम बन जाती है कि मुझे ये माला बनानी है, इसके लिए मैं ये फूल चुनने जा रहा हूं। आप फूल के लिए गोभी का फूल थोड़ा ना चुन लेंगे माला बनाने के लिए। ठीक है, ऐसे ही आप अगर सब्जी बना, ज्यादा मत खींचे उसको, ऐसे ही अगर आप, यहाँ पे ताकत वाला काम नहीं तो ऐसे ही अगर आप सब्जी बनाने जा रहे हैं तो जैसे आप देख रहे हैं कि कद्दू है, ये लौकी है, तुरंत मन में धारणा आती कि इसको मैं यह सब्जी बनाकर कृष्ण को अर्पित करूंगा। क्या नहीं आई थी आज आपकी भावना? तो आप समझिए, जैसे ही आपने सोचा कि ये कद्दू या लौकी जो कुछ बनाऊंगा वो गौरनेता के लिए बनाऊंगा, तो वह तुरंत भौतिक से आध्यात्मिक हो जाती है। वस्तुतः वह आध्यात्मिक ही है, समझ रहे हैं? मैटर रिगेन्स इज स्पिरिचुअल क्वालिटी वेन एंगेज्ड इन कृष्णस सर्विस। भौतिक पदार्थ अपने आध्यात्मिक गुणों को प्राप्त कर लेता है जैसे ही वह कृष्ण की सेवा में नियोजित होता है। यस प्रभु,
रूपाज जी ने कहा है
आराम से,
वी आर नॉट दी अगेंस्ट द मशीन इफ दे यूज फॉर कृष्ण सर्विस।
रूपाज जी बोलते हैं इसको कि इसको इसमें प्रथम स्कंद में बोलते हैं श्रवणम कीर्तनम के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा सकता है। और आप देख सकते हैं कि अगर हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से कुछ गलत देखते हैं तो हमारा चित्त दूषित हो जाता है। उसी प्रकार से जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से तो हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है। ठीक है, ओके, एक श्लोक और देखेंगे फिर हम रुक जाएंगे, उसके बाद भगवान का उत्तर हो जाएगा। विस्तरेणात्मनो योगम,
विस्तरेणात्मनो योगम,
विभूतिम च जनार्दन,
विभूतिम च जनार्दन,
भूय कथ्य तृप्तिर्हि,
भूय कथ्य तृप्तिर्हि,
शुण्वतो नास्ति मे मृतम्,
शुण्वतो नास्ति मे मृतम्।
विस्तरेण आत्मन योगम विभूतिम च जनार्दन। हे जनार्दन, आप विस्तार में कहिए, अब इसमें क्या स्पेशल है? कहां खड़े हैं अर्जुन? रेस्टोरेंट में नहीं, कृष्ण हॉल में, युद्ध भूमि में। लेकिन युद्ध भूमि में तो खड़े हैं, लेकिन ध्यान देना चाहिए कि बिगुल बज चुका है, फायरिंग चालू होने वाली है, और तब क्या बोल रहे हैं आप विस्तार से बताइए। युद्ध होता रहेगा, युद्ध की चिंता उतनी नहीं है, समझ रहे हैं कि देख रहे हैं शुद्ध भक्त का लक्षण। अब थोड़ा सोचिए, वो श्लोक याद है ना कि मन को संयमित करना बहुत कठिन है। कौन से अध्याय का है? छठे अध्याय। कौन से ग्रंथ का? भगवत गीता का। क्या श्लोक है? चंचलम ही मनः कृष्णा परमाथि बलवद्रदम तस्याहं निग्रहं मने वायुरेवा सुदुष्करम। हे कृष्ण, मन बड़ा चंचल है और उसको निग्रह करना इतना कठिन है कि वायु कंट्रोल कर सकता हूं लेकिन मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, भूय कथ्या तृप्तिर्हि शुणमतो नास्ति मे मृतम। भूया मतलब फिर से कहिए। अरे क्यों कहें? तो कहते तृप्ति ही शुणमतो नास्ति, मैं सुन रहा हूं लेकिन मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। अब जरा और विचार कीजिए, सुन रहा आदमी कम सुन पाता है। मोहित सुनाई पड़ा प्रश्न, क्या बोला मैंने? मैंने क्या बोला? देखो देखो देखो, मैंने क्या बोला? आदमी कम सुन पाता है। आपने बोला आदमी कम सुन पाता है, तो कोई बात नहीं। अब देखिए, हल्का सा नहीं पकड़ पाए मन से, आप ही नहीं सबके संग ऐसा होता है। तो यानी कि सुनने का अर्थ है, अगर सुन रहा है तो मतलब मन लगा है। मान रहे हैं, मैं एक सूत्र बताना चाहता हूं, बड़ा रहस्यमय है। ऐसे मन को संयमित करना बड़ा कठिन है, लेकिन कथा में रुचि है तो क्योंकि कथा में सुनने में रुचि है इसलिए मन को कथा में लगाने में कठिनाई नहीं होती है। ये समझ में आए? और कथा में रुचि है, इसका अर्थ क्या है? भगवान की भक्ति है। अगर भक्ति नहीं होगी तो इस प्रकार की रुचि नहीं हो सकती। यस, तो हमारे लिए ये मन को संयमित करना कोई कठिन नहीं है उस दृष्टि से कि हम भगवान की कथा को सुनते रहते हैं या उन कार्यों को करते हैं जो उससे भगवान में हमारी मति लगे। गुड बॉय, ठीक है। अब इस पर मैं एक श्लोक कहना चाहता हूं, ये श्रीमद् भागवतम का है, बहुत सुंदर है, कई बार मैंने बोला है, फिर से बोलूंगा कि तृप्ति नहीं होती, बहुत सुंदर है। वयम तु ना वितृप्यामः उत्तम श्लोक विक्रमे यत् शृण्वताम रसज्ञानाम साधु स्वादु पदे पदे। वयम तु, कौन बोल रहे हैं ये? शौनक आदि ऋषि। उन्होंने प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न कर दिए। तो मान लो अगर सूत गोस्वामी कहते रहे तुम एक प्रश्न करते, दो प्रश्न करते, तुम तो प्रश्नों की झड़ी लगा दे रहे हो, ये क्या बात हुई? तो कहते देखिए, इसका कारण ये है कि हम कथा सुनने के प्रति बहुत हमारा आग्रह है, हमारी तृप्ति नहीं हो रही, तो इसलिए बोल रहे हैं वयम तू। तू मतलब क्या सुना था? कृष्णस्तु। तो वयम तू, वयम तू ना वितृप्यामः। चलो कठिन प्रश्न करते हैं। वयम मतलब हम, तू मतलब लेकिन, न वितृप्यामः बढ़िया से वितृप्त नहीं होते हैं। इसमें कर्ता कौन है और विधेय कौन है? वयम हो गए कर्ता, ना तू वितृप्यामः ये विधेय। समझ गए? गुड बॉयज, समझ में आ गया। अब समझ में आ रहा है शब्द को, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, आपस कठिन चीजें नहीं बोलते। तो कह रहे हैं वयम तू ना वितृप्यामः, भाई हम तृप्त नहीं होते, अन्य लोग तृप्त हो सकते हैं, तो क्यों नहीं हो रहे? वयम तू ना वितृप्यामः उत्तम श्लोक विक्रम में, भगवान कृष्ण की महिमा सुन करके हम तृप्त नहीं हो रहे। नाम शब्द है उत्तम श्लोक, जिनका गुणगान उत्तम श्लोकों में किया जाता है। कह रहे क्यों? कहते हैं यत् शुण्वताम रसज्ञानाम, जो रसज्ञ हैं और इस कथा को सुनते हैं तो कह रहे हैं स्वादु स्वादु पदे पदे, उनको हर पद पे नया नया स्वाद प्राप्त होता है। चेतन चरताम, चेतन महाप्रभु की शिक्षा में कुछ ऐसा श्लोक है आपको? शिक्षा अष्टक में चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्याभदु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम। प्रतिपद पे हरि नाम संकीर्तन आनंद को बढ़ाने वाला है। वही चीज है कि किसके लिए? जो रसज्ञ हैं, जो रस को जानने वाले हैं। तो उसको हमने आपको बताया था, श्री स्वामी की टीका याद है, तीन बताई थी बात क्यों कथा से तृप्ति नहीं होती। पहली बात ये कि ओके गुड, ऐसे मुझे ऑडियंस चाहिए जो सब कुछ भूल जाती रहे। भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ मुझे एक ऐसी ऑडियंस दे जो जो भी मैं बोलूं कल तक जरूर भूल जाए ताकि मुझे कुछ नया नहीं बताना पड़े। लेकिन फिर भी पहला कारण है कि कान आकाश स्वरूप है। जैसे आज हमारे प्रभु जी ने बहुत अच्छा प्रसादम बनाया था, लेकिन एक दिक्कत थी। दिक्कत यह कि हमारा पेट लिमिटेड है। दिक्कत है कि नहीं है ना? लिमिटेड। और कितना भी अच्छा बना हो लेकिन पेट सिग्नल बोल देता नहीं, आप और नहीं खा सकते। लेकिन क्या कान में ऐसी लिमिटेशन है? अगर किसी को अच्छा लग रहा है कथा तो बोलता जाए और सुनता जाए, उसमें कोई कान तो कोई भरने वाला नहीं है, तो इसलिए तृप्ति नहीं हो रही। ठीक। दूसरा, हो सकता है कि वह उसके रस को ना जानता हो। जैसे आज हमारे इस भक्त ने बड़ी सुंदर प्रसाद बनाया, खिचड़ी, मुझको बहुत अच्छी लगी। दूसरा भक्त बोला, आपको अच्छी लगी? आपको अच्छी लगी? अब बोल लेते, प्रभु जी हमको सबके बारे में सोचना चाहिए, एक्चुअली मुझे सुनाई पड़ रहा था, प्रभु जी आपको मेरे बारे में सोचना चाहिए। तो मैंने फिर उनको समझाया, मैंने कहा देखिए ऐसा नहीं है, सबका मन अलग अलग होता है, तो उसका रस नहीं समझ में आ रहा, ये उनकी बात नहीं है। नीम बैंगन बना देते तो हम भी कहते रहे मेरे बारे में, तो हमें सबके बारे में सोचना चाहिए। बोलते मुझे सब रस नहीं है। उदाहरण और दिया था, भरतनाट्यम का दिया था उदाहरण, याद आ रहा ना? भाई कहा जाए कि आज शाम को 8 बजे से भरतनाट्यम है तो कौन देख, चाहे पुरुष लोग भी करें तो भी हमें कोई रुचि नहीं होगी। भरतनाट्यम में हमको रस ही नहीं समझ में आ रहा, भाव भंगमा ही नहीं समझ में आ रही। तो रसज्ञता का भाव होगा तो भी तृप्ति हो जाएगी, भाई अभाव तो क्या हम नहीं सुन रहे। मुझे याद है हम लोग साउथ इंडिया में थे कॉलेज में, तो हम लोग रैगिंग में कन्नड़ पिक्चर दिखाने के लगे थे। कुछ भी समझ नहीं आ रहा लेकिन गाना याद हो गया, संविद को मम सविद को ना निन्ना बिडला रे से। तो ये दिखाता है कि श्रवण का ये प्रभाव है कि आपको ऐसे याद हो जाएगा, ऐसे हरे कृष्ण मंत्र दिखा देते तो बड़ा अच्छा रहता। बट द आइडिया इज कि मैं खाली बोल रहा हूँ कि हम लोग बोर हो रहे थे, क्या है, क्यों उनको परेशान कर रहे हैं इस प्रकार से। उसी प्रकार से किसी को कथा समझ में नहीं आ रही है तो भव्य वितृप्त हो जाए, भाई बहुत हो गया नहीं सुनना है। होता है ऐसा, होता है कि नहीं? हम भरतपुर में प्रवचन करने जाते थे, डॉक्टर साहब आते थे, फिर आना बंद कर, हमको समझ में नहीं आता क्या बोल रहे, ऐसे डॉक्टर हैं बड़े बुद्धिमान है लेकिन समझ में नहीं आ रहा, तो नहीं नहीं। और अन्य भक्त इनको समझ में आ रहा, वो दौड़ दौड़ करके आ रहे हैं तो समझ में आ। दूसरा कारण क्या हो सकता है? रसज्ञता का भाव। तो कहते नहीं हम तो रसज्ञ हैं, हम तो जान रहे हैं कथा का। और फिर कहते हैं कुछ कुछ चीजों में ऐसा होता है कि रस बाद में समाप्त हो जाता है, जैसे गन्ने का जूस। गन्ने से जूस निकालते हैं, एक बार उसको डालेंगे पेरेंगे, फिर दूसरी बार पेरेंगे, फिर उसमें जूस समाप्त हो जाता है। लेकिन कृष्ण कथा ऐसी है कि जितनी बार उसको आप सुनेंगे स्मरण करेंगे उतना और अच्छा लगेगा। तीन कारण याद हुए, एक कान आकाश स्वरूप है, कभी भरते नहीं। दूसरा हृदय, हृदय में आप रस का अनुभव कर पा रहे हो इसलिए तृप्त नहीं हो रहे। और तीसरा क्या है कि वह कृष्ण कथा कभी रस समाप्त होता ही नहीं। तो यही बात यहाँ पे अर्जुन पे घटित हो रही है कि नहीं? भागवतों का तीसरा श्लोक क्या है, प्रथम अध्याय का, निगम कल्पतरु गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहु रहो रसिका भू भावका। तो वहां पर रसिका, वहां पर भी रसिक बताया गया कि जिन्होंने भक्ति के द्वारा भागवत के रस का अनुभव करने की क्षमता को प्राप्त कर लिया है, आप पीजिए। पीजिए मतलब रुकिए मत। अब जैसे एक उदाहरण दूं, आज हमारे भक्त लोग मैंगो जूस बना रहे थे, बात मैंगो के जूस की थी लेकिन मुझे ये श्लोक याद आ रहा था जो भागवत को रस आलय से कंपेयर किया गया है कि ऐसा फल जिसमें छिलका नहीं, गोटली नहीं है, केवल रस ही रस। अब देख रहे हैं सुनने का प्रभाव क्या होता है। आप बोल रहे हैं मैंगो जूस और मुझे स्मरण आ रहा है कि हाँ भागवत को मैंगो से ऐसे मैंगो से कंपेयर किया है, इसमें गुटली नहीं छिलका नहीं, तो ये सुनने का प्रभाव होता है, वो स्मरण होने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अर्जुन की क्या गुण, ये भगवत प्रेमी है, इस कारण से उनका मन भगवान के रूप गुण लीला इत्यादि सभी को सुन करके बहुत प्रसन्न हो रहा है, उनको मन को संयमित करने में कोई कठिनाई नहीं है। ये इसलिए मैं बहुत व्याख्या करना चाहता हूँ, ये श्लोक मुझे चाह रहा था, बड़ा रहस्यमय है, ये दिखाता है कि युद्ध की परिस्थिति में भी कृष्ण का स्मरण हो सकता है अगर भगवत प्रेम है। वृतासुर, यस वृतासुर भी का बहुत सुंदर उदाहरण है। वृतासुर भी युद्ध के समय, भीषण युद्ध के समय कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात इन्होंने मुझे स्मरण करा दी, मैं इस पर क्लास दे रहा था तो वृतासुर जो है क्या बोल रहे हैं, चक्रवर्ती बात बहुत अच्छा बोल रहा है इस पट्टिका में। नहीं वह तो है, वो कह रहे हैं क्यों प्रार्थना बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये असुर का शरीर है और इंद्र तो मेरा वध कर नहीं रहा है, तो मैं अपने भगवान संकर्षण का ही स्मरण करता हूं जो मुझे इस कलेवर से मुक्त करें। इस प्रकार से बहुत अलग है, कभी भागवत को चर्चा करेंगे, बहुत सुंदर टीका है उसके ऊपर। देखिए वही हुआ ना, हृतकर्ण रसायन का था, उस अर्थ का स्मरण करने से सुख मिलता है। भागवत के पढ़ते हैं, हे जनार्दन आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूं, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूं उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूं। ये कृष्ण कथा का स्वभाव है, कृष्ण प्रेम का स्वभाव है। जितना हम भगवान के प्रति प्रेम जागृत होगा, उसको संतुष्ट करने के लिए या उसकी पूर्ति के लिए जितना हम सेवा करेंगे, फिर क्या लाभ प्राप्त होगा आपको, और वह करने की इच्छा जागृत हो जाएगी। तो कृष्ण कथा में रुचि उत्पन्न का क्या उत्पन्न करने का क्या तरीका है? कृष्ण कथा, कथा से कथा का प्रसव होता है, कथा से कथा जन्म लेती है। सुंदर माधवपुर समझ पा रहे हैं? यस। गीता भूषण टीका, परंतु अजन्मा होने आदि के अपने कल्याण गुणों का और अपनी विभूतियों का वर्णन मैंने तुम्हें पहले ही कई बार कर दिया है, तो तुम फिर से इनके विषय में क्यों पूछ रहे हो? ये पहला लाइन क्या है? लिंक है। लिंक समझ में आया? अरे भाई तुमको बता तो दिया कि मैं जन्मा हूं, अनादि हूं, सब कुछ है, अब क्यों और पूछ रहे हो, क्या कारण है? ठीक, ये बस बोलना है। कृपया अपने गुणों और विभूतियों के विषय में विस्तार से कहिए। जनार्दन का शब्द, जनार्दन शब्द का अर्थ है जिसकी शरण आर्त जन अपनी दुख निवृत्ति के लिए लेते हैं, मतलब लोगों के दुखों का मर्दन करने वाले, समाप्त करने वाले जनार्दन। वैसे एक विनोद की बात है, हम लोग टीका में पढ़े थे जहां पे अर्जुन बोल रहे हैं भगवान को जनार्दन, और वहां पे टीका में क्या बोला गया था, वहां पे जनार्दन करती था कि लोगों को मारने वाले, तो आप तो ऐसे लोगों को मारने वाले हैं, आप भीष्म पितामह को मार दीजिए, मुझे भी मारने के लिए क्यों कह रहे हैं? तो ये थोड़ा सा हाँ पढ़े थे हम लोग गीता में, इस प्रकार से अलग अलग अर्थ लिए जाते हैं। आपके श्रीमुख से निस्सृत, निस्सृत मतलब निकलती, हाँ, अमृत को मैं अपने कान रूपी जिह्वा से चख रहा हूं, परंतु मैं तुष्ट नहीं होना। कर्ण विवरय, भागवत का श्लोक है, कितना अमेजिंग है ना। प्रभु जी ने बढ़िया प्रसाद बनाया, हमारे कर्णामृत तो रेगुलरली प्रसाद हम अच्छा बनाते हैं, कैसे चखते हैं आप? जीव से। ठीक, और यहां क्या बोल रहे हैं, कथा रूपी अमृत को अपनी जीभ रूपी, सॉरी अपने कान रूपी जीव से चख रहे हैं। बस अब यही है कि इस कान रूपी जीव को अगर हमने डेवलप कर लिया तो क्या फायदा है, जितना चाहे उतना पी सकते, वहां कोई लिमिट नहीं है। और जैसे अभी प्रसाद आया था तो आज मैं पूछा भक्त को, राइस लाए? हाँ राइस तो लाया, कितना लाए? थोड़ा सा राइस लाए, तो ऐसा ठीक है। लेकिन यहाँ जो मतलब समझ रहे हैं, उसमें लिमिटेशन है कि भाई प्रसाद में अगर एक किलो राइस है तो इतने लोग खा सकते हैं, और आप प्रसाद हमको व्हाट्सएप से नहीं भेज सकते, है ना। प्रसाद की महिमा नहीं कम कर रहा हूं, एक लिमिटेशन है। लेकिन कृष्ण कथा आप सभी लोगों को बराबर रूप से सुनाई पड़ रही है कि नहीं? ठीक है, कुछ कमी है। बराबर रूप से ग्रहण कर रहे हैं वो आपकी इच्छा, लेकिन आपके पास पहुंच रही ना बराबर रूप से, समझ में आ रहा है? प्रभुपाद जी के ग्रंथ सबके पास बराबर रूप से है ना, कोई अस्त्र, कोई शास्त्र, कोई कोई भागवत का कोई ग्रंथ कोई कम तो नहीं है ना, फोन में है ना, कितना ग्रहण कर रहे हैं हमारे ऊपर है। तो श्रवण कीर्तन के प्रोसेस में तो कोई भी झगड़े का सिस्टम नहीं। कभी झगड़ा हुआ है कि हम वक्त वक्त तो बोल रहे, कभी झगड़ा हुआ मंदिर में जप के लिए स्थान नहीं मिल रहा? कभी झगड़ा नहीं हुआ? कभी झगड़ा हुआ कि भागवत क्लास में घुसने नहीं दे रहे? कभी झगड़ा नहीं होता, सबके लिए स्थान है। झगड़ा तो केवल तभी होता है जब अपनी इंद्रिय तृप्ति जाती। तो यहां पे बहुत सुंदर मुझे लगा, ये भागवत में भी श्लोक है, इसमें शब्द आता है कर्ण विवरय, तो अपने कान रूपी जिह्वा से कृष्ण कथा का आस्वादन करना। तात्पर्य इस प्रकार का पढ़ी, तात्पर्य पढ़ी। आप लोग पता नहीं ऐसा अनुभव कर रहे हो कि नहीं, जैसे इस भगवद गीता को केवल आप मन मन में पढ़िए, और अब जैसे अनुपम कृष्ण प्रभु बोल के पढ़ते हैं और आप सुनते हैं, आपको अंतर नहीं लगता उसमें? अनुभव करते कि नहीं? आपको ऐसे पढ़ लीजिए वो अलग बात है, लेकिन जब कान से वो प्रवेश करता है, प्रवेश न कर रहे देना, वो बहुत अच्छा लगता है। और दूसरा, जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं तो प्रभु जी ने भी स्मरण किया वृतस्वर का, ये भागवत में बोला गया, स्मरत स्मारत घनाशम, भक्त इकट्ठे होते हैं और और एक दूसरे को कृष्ण का स्मरण करा के दोनों ही लोग अपने पाप का नष्ट करने वाले, दोनों का भी उद्देश्य है कि कृष्ण का गुणगान करना। यही भक्तों का मुख्य स्वरूप लक्षण बताया था, मुख्य कार्य बताया गया था, अभी पढ़ा था ना हमने दशम अध्याय में। यस,
तात्पर्य इसी प्रकार का निवेदन नैमिषारण्य के शौनक ऋषि के ने सुध गोस्वामी से किया था। यह निवेदन इस प्रकार है।
देखिए यह श्लोक मुझे, मैं ध्यान नहीं दिया था कि श्लोक तात्पर्य में है, मैं जल्दी से कॉपी कट कॉपी पेस्ट कर दिया था। इस पर बोला जाए मेरे पीछे बोलिए, हम गा के बोएंगे इसको। वयम तु ना वितृप्यामा,
वयम तु ना वितृप्यामा,
उत्तम श्लोक विक्रमे,
उत्तम श्लोक विक्रमे,
यशुण्वताम रसज्ञाना,
यशुण्वताम रसज्ञाना,
स्वादु स्वादु पदे पदे,
स्वादु स्वादु पदे पदे।
आप लोग से निवेदन है कृपया उसको याद कर लीजिए, बहुत सुंदर श्लोक है, ठीक है, बहुत सुंदर आपको याद हो गया, वेरी गुड। एक बार और बोले, वयम तु ना वितृप्यामा,
वयम तु ना वितृप्यामा,
उत्तम श्लोक विक्रमे,
उत्तम श्लोक विक्रमे,
यशुण्वताम रसज्ञाना,
यशुण्वताम रसज्ञाना,
स्वादु स्वादु पदे पदे,
स्वादु स्वादु पदे पदे।
श्लोक आप लोगों के सामने तो फिर से व्याख्या कर दे रहा हूं। वयम मतलब हम लोग, तू मतलब लेकिन, अन्य लोग तृप्त हो सकते हैं बट वयम तु ना वितृप्यामा, संस्कृत समझ में आ रही है, अन्य लोग तृप्त हो सकते हैं लेकिन हम तृप्त नहीं, हमारे मग्गे बहुत बड़े हैं समझ रहे ना, हम खूब जूस पीना चाहते हैं, कौन सा जूस, कृष्ण कथा का। लेकिन अच्छी बात यह कि यहाँ पे मग्गे का साइज यानी कान का साइज बड़ा करने की जरूरत नहीं है, केवल आग्रह चाहिए, कितना भी बड़ा मग्गा कर लो कितना प्रसाद खा सकते। कभी कभी लोग बोलते हैं जब हम घर में जाते हैं प्रसाद के लिए तो कहते हैं प्रभु जी क्या लाए, तो एक पेट और ले आइए, क्योंकि प्रसाद तो बहुत अच्छा है लेकिन पेट भर गया है। इस प्रकार से किससे तृप्त नहीं हो रहे हैं, उत्तम श्लोक विक्रम है, भगवान उत्तम श्लोक के विक्रम मतलब महान कार्यों के बारे में सुनने से। यत् शुण्वताम रसज्ञानाम, जो रसज्ञ हैं, जो भगवान की लीला कथा के रस को जानते हैं, उनको क्या होता है, स्वादु स्वादु पदे पदे, हर पद पे हर हर शब्द पे उनको सुख मिलता है। पढ़िए आगे।
उत्तम स्तुतियों द्वारा प्रशंसित कृष्ण की दिव्य लीलाओं का निरंतर श्रवण करते हुए कभी तृप्ति नहीं होती, किंतु जिन्होंने कृष्ण से अपना दिव्य संबंध स्थापित कर लिया है वे पद पद पर भगवान की लीलाओं का वर्णन का आनंद लेते रहते हैं। श्रीमद् भागवतम 1:1-19।
अच्छा ये भी इंटरेस्टिंग है। अच्छा ओह सॉरी, मुझे लगा 1:11, 1:19 ठीक।
अतः अर्जुन कृष्ण के विषय में और विशेष रूप से उनके सर्वव्यापी रूप के बारे में सुनना चाहते हैं। जहां तक अमृतम की बात है, कृष्ण संबंधी कोई भी आख्यान अमृत तुल्य है और इस अमृत की अनुभूति व्यवहार से ही की जा सकती है। हाँ,
और अगर कभी कभी क्लास थोड़ी कठिन हो तो भी वे अमृत तो ले। जैसे आज सुबह की क्लास थोड़ी कठिन थी, लेकिन देखिए आपने कल आज सुबह सुना, अब वही प्रश्न मैंने विधेय और उद्देश्य के संबंध में किया तो आप उत्तर दे पाए। थोड़ा हमें समय लगा समझाने में, लेकिन आप समझ, एक्चुअली मैं ये कोई कृष्ण कथा भी नहीं तो सिंपल ग्रामर पढ़ा रहा था, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, लेकिन उस ग्रामर का संबंध कृष्ण से लिया जा रहा है, अन्यथा सब्जेक्ट प्रेडिकेट पढ़ने में। हाँ ये देखो, इतने साल बीत गए, कितने साल बीत गए, 2003 से भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, आज हो गया 2020, 17 साल तक मैंने कभी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में कोई सब्जेक्ट ही नहीं आया, कभी नहीं किया, लेकिन जब इसका संबंध कृष्णस्तु भगवान स्वयं से था तो माथा मारना चालू कर दिया कि क्या मतलब है सब्जेक्ट का, क्या मतलब प्रेडिकेट का। Does it make sense? अंदर कोई, जब हम लोग कॉलेज में भी पढ़ते थे तब भी याद नहीं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कभी ध्यान दिए हो, कभी ध्यान ही नहीं दिया, सुना था लेकिन ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब कृष्ण से संबंध है, टीका समझनी है, तब उसके लिए मेहनत कर, नंबर लाने के लिए पढ़ते थे लेकिन तब भी याद नहीं है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या, कभी समझ में नहीं आया था मुझे ठीक से, नंबर तो आ ही जाते हैं कोई दिक्कत नहीं, समझने की जरूरत नहीं होती है। माता पिता सोचते हैं लड़का बहुत तेज है, लेकिन लड़का केवल नंबर लाने में तेज है, सब्जेक्ट समझने में तेज नहीं होते। तो इस प्रकार से तो ये बड़ी सुंदर बात है। यस,
आधुनिक कहानियां, कथाएं तथा इतिहास कृष्ण की दिव्य लीलाओं से इसलिए भिन्न है क्योंकि संसारी कहानियों के सुनने से मन भर जाता है, किंतु कृष्ण के विषय में सुनने से कभी थकान नहीं आती। यही कारण है कि सारे विश्व का इतिहास,
इसका कारण भी है कि जब कृष्ण के बारे में सुनते हैं तो कृष्ण सुखी होते हैं और कृष्ण सुखी होते हैं तो हम सुख का अनुभव करते हैं, ये बात। और जगत की वार्ता कैसी है? डेड वार्ता, जो जिंदा व्यक्ति है उसको मार देती है, और कृष्ण कथा कैसी है? जो मरे हुए व्यक्ति है उनको जिंदा कर देती। जीवंत सन मुखरितम भवति, ये वार्ता। वो तभी जी ही रहे हैं जब कथा सुन रहे हैं, अन्यथा वो मृत है। यस,
यही कारण है कि सारे विश्व का इतिहास भगवान के अवतारों की लीलाओं के संदर्भों से पटा हुआ है।
ये हर पुराण में भगवान की कथा रखी गई है। यस,
हमारे पुराण विगत युगों के इतिहास हैं, जिनमें भगवान के विविध अवतारों की लीलाओं का वर्णन है। इस प्रकार बारंबार पढ़ने पर भी विषय वस्तु नवीन बनी रहती है।
हाँ, और आपको हमेशा एक और इम्पोर्टेंट बात है, जैसे जैसे आपकी चेतना शुद्ध होती जाएगी उसमें आपको और गंभीर अर्थ समझ में आते चले जाएंगे, और उसके लिए अलग कुछ नहीं करना, उसी को बारंबार पढ़ना। चैतन्य चरितामृत में कहा गया, आपको समझ में नहीं आता है चैतन्य चरितामृत तो आप इसको मत पढ़िए, ये कह रहे हैं नहीं, कहते हैं बार बार पढ़िए। अरे भाई, समझ में नहीं आ रहा तो कैसे बार बार पढ़ेंगे? आप पढ़ते जाइए, आप शुद्ध होते जाएंगे और आपको समझ में आता जाएगा। कोई समझाने वाला अंदर ही बैठा हुआ है, टीचर कृष्ण बैठे हैं कि नहीं? मैं फिर से बोलूंगा, एक स्मॉल मेडिटेशन, आप पढ़ने बैठे तो स्मरण करिए कि कृष्ण अंदर ही बैठे हैं, बड़े प्रसन्न हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य लेक्चर में बोलते हैं, जब कोई व्यक्ति भगवत गीता पढ़ता है तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। क्यों? तो वो कहते, तो भगवान कृष्ण क्या सोचते हैं, अरे भाई, जगत में कोई तो मेरे बारे में पढ़ रहा है, देखो मोहित पढ़ रहा है मेरे बारे में। मुझे याद है मोहित प्रभु इतने उत्साहित थे कि भगवत गीता को अपने संग लेके घूमते थे, है ना। मुझे भगवत गीता पढ़नी, मुझे भगवत गीता पढ़नी। अब देखिए, भगवान ने आपकी इच्छा पूर्ण भी कर दी। आप लोग एटलीस्ट सितंबर एक सेमेस्टर गीता पढ़ लें, ऑलमोस्ट नहीं, ऑलमोस्ट आधा सेमेस्टर गीता पढ़ लिया कि नहीं पढ़ ली? पूरा सेमेस्टर कर लिया आपने गीता में। भगवान इच्छा पूर्ण करते हैं, और देखिए आपकी इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान ने पूरा जगत में कोरोना वायरस फैला दिया। कह रही तो विनोद की बात है। कोई प्रश्न है? सोशल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।